शेर है और ये सारे भेड़ है। तो उन भेड़ों के बीच में शेर कह रहा है, वंस आई एम इलेक्टेड आई विल बिकम वेजिटेरियन। एक बार यदि चुनाव में मैं जीत जाऊं तो मैं शाकाहारी बन जाऊंगा। अब ये चित्र दिया गया है आपको, तो इस चित्र से क्या क्या आप समझ रहे हैं, इंटरप्रिटेशन क्या है इस चित्र का? कोई भी चीज पढ़ने के बाद उसका निष्कर्ष निकालना और उसे लिखना, पैराफ्रेजिंग, ये एक आर्ट है। कोई कविता पढ़ लिया, कोई गद्य पद्य पढ़ लिया, कोई परिच्छेद पढ़ लिया, कोई मुरली पढ़ ली, और मुरली पढ़ने के बाद उसका सार क्या है वो लिखना, ये एक कला है, इसको विकसित करना है। तो अभी ये चित्र आपके सामने दिया, बताया, इससे आप क्या क्या सोच सकते हैं कि एक शेर है, ये सारे शिप भेड़ हैं, और वो कहता है मुझे आप वोट दो। हाँ, तो सबसे पहला इससे क्या पता चल रहा है कि वादे, जो नेताओं के जो वादे होते हैं उसकी मानसिकता यहाँ पता चल रही है कि वो बड़े बड़े वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं। एक दूसरा और क्या पता चल रहा है, जो जनता है वो कितनी भोली है और वो विश्वास भी कर रही है, कितने ध्यान से सुन रहे, देखो सारे भेड़ एकदम कान लगा के सुन रहे हैं। तो दूसरी, जनता फंसती है, फंस जाती है, ये दूसरा। तीसरा, उसका ये जो दावा है, ये चुनावी दावा है, चुनावी वादे हैं ये सारे। वो क्या कहता है, वंस आई एम सिलेक्टेड, मतलब कंडीशन है, नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। और क्या पता चल रहा है इससे, एक शेर जो है वो कभी भी शाकाहारी नहीं बन सकता, उसके स्वभाव के विरुद्ध है वो। तो केवल भाषण देने से और वादे करने से स्वभाव परिवर्तन नहीं होता है। स्वभाव परिवर्तन के लिए क्या चाहिए, आग चाहिए, आग, तप चाहिए, तप, आंतरिक तपस्या चाहिए। तो ये एक चित्र कितनी सारी बातों को दर्शा रहा है। हाँ, ये दूसरों को बुद्धू भी बना रहा है। और क्या पता चल रहा है इससे, हाँ ये जो है ये पहले ही भयभीत है, डर में है, हिप्नोटाइज्ड है, वो तर्क प्रयोग नहीं कर रहे। तर्क, अपनी तर्क शक्ति, क्रिटिकल एनालिसिस की जो पावर है, नहीं तो किसी के भी प्रभाव में आ जाएंगे, किसी को भी सुनेंगे और उसके प्रभाव में आ जाएंगे। डू नॉट बिलीव एनीथिंग बिकॉज यू हैव हर्ड इट, बुद्ध ने कहा है किसी बात को तब तक विश्वास नहीं करो किसी और ने कहा है, बिकॉज इट इज रिटन इन स्क्रिप्चर्स, क्योंकि वो किसी ग्रंथ में लिखा है, बिकॉज इट हैज बीन हैलोड ड्राउन बाय ट्रेडिशन, परंपरा से तुम्हारे तक आया है, इसीलिए। फाइंड द ट्रूथ योर सेल्फ, स्वयं ही स्वयं को सत्य ढूंढना है। हाँ, ये दूसरे के भोलेपन का भी लाभ उठा रहा है, ये एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है समाज में, क्या हो रहा है, शोषण। ये चित्र किसका प्रतीक है, शोषण का प्रतीक है। ये चित्र किसका प्रतीक है, भोली मानसिकता का प्रतीक है। ये चित्र अंधश्रद्धा का प्रतीक है, अंधविश्वास का प्रतीक है, मिसयूज का प्रतीक है, झूठे वायदों का प्रतीक है, चुनावी दावों का प्रतीक है, समझ की कमी का प्रतीक है, तर्क बुद्धि का कमी की का प्रतीक है, और समाज की एक मानसिकता का प्रतीक है, और दबाव में रखना है दूसरों को, और डोमिनेटिंग नेचर, एक तानाशाही, और एक ये वादा कैसा है, वंस आई एम इलेक्टेड, मतलब ये कैसा है, ये होगा तो पहले तुम, तब तक मैं तुम सबको खा जाऊंगा। तो ये सब, इसको क्या कहा जाता है, जो भी यहाँ कोई लिटरेचर का स्टूडेंट है एमए इंग्लिश लिटरेचर, एमए हिंदी लिटरेचर, एमए संस्कृत लिटरेचर, तो वो जो लिटरेचर के जो स्टूडेंट होते हैं उनको क्या कहा, क्या एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में एक पैराग्राफ है, जैसे ये पांच बातें दिखे, आपको इसको 10 पेजेस में लिखना है। वहां लिखना होता है, एमसीक्यू नहीं है वहां पे। जो हमारी एग्जाम है ना जिसमें हम टिक मार्क करते हैं, वो नहीं होता है उसमें, उसमें लिखना होता है आपको कैसे आप लिखते हैं, कैसे एनालाइज करते हो चीजों को। तो ये एक कला है जो डेवलप करनी है। इसलिए आज का होमवर्क जो है ये पांच महावाक्य है। पहला महावाक्य है कर्मेंद्रियजीत, दूसरा महावाक्य है पर्सनैलिटी रॉयल्टी, तीसरा महावाक्य है पांच SB KB KB RB DB SB अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम भावना और DB दाता भावना। तो ये पांच भावनाएं यहाँ पर है, 5 टाइप्स ऑफ फीलिंग्स इमोशंस। और उसके बाद में है रिस्पेक्ट, सम्मान और लास्ट है संतुष्ट मणि। तो ये जो पांच पॉइंट्स है इनका आपको एक सटायरिकल, सटायर पता है, सटायर अर्थात व्यंगात्मक, या फिर एक चित्र स्केच बनाना है। जैसे कल भी हम लोगों ने जो भट्टी की थी उसमें एक्टिविटी कराई गई थी कि अपनी भावनाओं को एक चित्र के रूप में लिखी जाए, लिखा जाए नीचे, और फिर परम धाम में वो भावनाएं कैसी है उसको चित्र के रूप में बनाओ। तो सबने बहुत अच्छे अच्छे ड्राइंग्स भी बनाए थे। अभी संतुष्ट मणि है, संतुष्ट मणि ये शब्द बोलते ही कौन सा चित्र मन में आ रहा है, तो उसका चित्र कैसे, हाँ फलों की टोकरी भरी हुई है, ये एक चित्र हो गया ना। इसको हमने क्या कर दिया, सोचने की हमारी जो टेक्निक है, हम सोच रहे समस्याओं के विषय में, जीवन के विषय में उत्तर नहीं आ रहा है, अब उसको थोड़ा सा चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, उस समस्या को चित्र के रूप में। अभी संतुष्ट मणि का चित्र क्या बताया, जैसे उदाहरण फलों की टोकरी, दूसरा घड़ा भरा हुआ, और समंदर, और भी बताओ, चांद, सूरज और संतुष्ट मणि, और ये शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दाता की भावना, पांच भावनाओं का चित्र क्या हो सकता है, सोचना है। तो आज का होमवर्क है ये पांच जो पॉइंट्स है। पहले तो वाक्य है, वाक्य को हमने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, और फिर पॉइंट को चित्र में कन्वर्ट कर दिया, और वो चित्र अपने इमेजिनेशन से कितना भी फनी हो, कैसा भी हो, चलेगा। इसको कहते हैं एनालिसिस करना उसका। खाली मुरली सुनते रहे, बाप को याद करो, विकर्म विनाश करो, उसका असर होना खत्म हो गया, क्योंकि हम एनालिसिस नहीं कर रहे। भारत में एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था और है भी नालंदा, सुना है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उनकी दिनचर्या में सुबह ध्यान होता था, दिन भर क्लासेस चलती थी, और रात को डिबेट, वाद विवाद, शास्त्रार्थ। ओ आजकल जो टीवीज में जो डिबेट आती है न्यूज चैनल में, वो वाली नहीं, झगड़े वाली नहीं, मारपीट वाली नहीं, हेल्दी डिबेट, जिसमें क्या हो, हमारे यहाँ अभी क्या चल रहा है, ज्ञान के लेक्चर्स होते हैं सुबह से लेकर रात तक, भट्टियों में क्या होते हैं, क्लासेस होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, जिसमें वक्ता बैठा होता है, ऑडियंस होती है, वो अपने विचार सुना दे के चला जाता है, बस वो अपने जो जो विचार सुनाता है, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसा किया, तुम ऐसा करो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, डिडैक्टिक लेक्चरिंग कहते हैं। दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड डिडैक्टिक, ये करो वो करो ऐसा करो, ये एक है। दूसरी जो मेथड होती है वो है डिबेट्स, हेल्दी डिबेट्स, जिसमें चर्चा होती है, चार लोग बैठते हैं और चर्चा। तो ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी 1500 वर्ष पुरानी, इसकी ये दिनचर्या थी, और वहां पर भी एंट्रेंस एग्जाम होती थी एडमिशन के लिए, और एंट्रेंस एग्जाम कौन लेता था, वो जो द्वारपाल होता था ना वो लेता था, और उसमें से जितने लोग आते थे उसका पासिंग रेट जो था 20-30% लोग ही पास होते थे, बस ये थी उस समय की पासिंग एंट्रेंस एग्जाम नीट। कौन लेता था, जो द्वारपाल खड़ा रहता था वो लेता था, वो क्वेश्चन पूछता था, और टोटल स्टूडेंट्स वहां पे जो रहते थे 10,000, टीचर्स 1500, मतलब 6 स्टूडेंट्स के लिए एक मेंटोर, इंटेंस और हर प्रकार के सब्जेक्ट, फिजिक्स भौतिकी से लेके एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी सब कुछ उसमें रहते थे वो सारे लेक्चर्स। लाइब्रेरी जो थी वो 9 मंजिल की लाइब्रेरी थी, हर प्रकार की किताबें, हर प्रकार की पांडुलिपियां, शास्त्र, वेद, ग्रंथ सब कुछ थे वहां पर। जब ये वास्तव में इसकी नींव सम्राट अशोक ने रखी थी, परंतु उसका जो विकास हुआ वो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में स्वर्ण युग कहलाया जाता है नालंदा विश्वविद्यालय का। और इसका विनाश कैसे हुआ? बख्तियार खिलजी नाम का एक व्यक्ति था, वो बीमार पड़ा, और जब बीमार पड़ा कोई दवाई काम नहीं कर रही थी। नालंदा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के आयुर्वेदाचार्य को बुलाया गया, उसने वो कुरान में ही वो दवा लगाई और बिना इनको खिलाए उसको ठीक कर दिया। ऐसी कहानी है, किंवदंती है, कितनी सत्य है पता नहीं, परंतु उसे ईर्ष्या उत्पन्न हुई मन में और लगा, एक असुरक्षा का भाव जागा। तो बख्तियार खिलजी 12वीं शताब्दी इस यूनिवर्सिटी को उसने आग लगा दी, जिसकी लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। कितनी सारी किताबें थी, कितनी सारी, हजारों किताबें, लाखों किताबें, 9 मंजिल, और वो जल गई। लोगों को पता भी नहीं चलता जब तक कि 1812 में एक ब्रिटिश सर्वेयर ने इसको फिर से खोजा और 2010 में ये यूनिवर्सिटी फिर से एस्टेब्लिश हुई। 2024 में अभी इसका पुनर्निर्माण हुआ, न्यू यूनिवर्सिटी नालंदा। कहानी का भाव ये है कि ज्ञान को, किताबों को जलाया जा सकता है, ज्ञान को नहीं। और वहाँ के छात्र इतने 20 देशों से भी ज़्यादा स्थानों के शास्त्र वहाँ पढ़ते थे, तो वहाँ के शास्त्र या भारत की जो संस्कृति, वो सारा ज्ञान वहाँ पर था। तो विधि क्या थी? डिबेट। विधि क्या थी? चर्चा, तर्क। कोई भी चीज़ को अंधश्रद्धा के रूप में मान नहीं लिया। किसी ने कहा ये खाओ तो चले वो खाने लग गए, किसी ने कहा वो खाओ तो वो खाने लगे, किसी ने कहा ऐसा करो तो वैसा करने लग गए। खुद की बुद्धि किधर है? तर्क शक्ति। और तर्क शक्ति कैसे विकसित होगी? चर्चा से। ज्ञान चर्चा, ज्ञान की लेन देन, डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डायग्राम, स्केचिंग, ड्राइंग, नोट्स, वेरी गुड नोट्स, जो भी ये सारी एग्जाम्स होती है ना, आईएएस की एग्जाम्स, और इसमें लिखना होता है बहुत। और जो एग्जामिनर होता है वो कैसे देखता है? मानसिकता क्या होती है उसकी? कितना भी किसी ने बहुत सही उत्तर लिखा पर ठीक से नहीं लिखा है तो कितने मार्क्स देगा उसको? थोड़े वो क्या देखता है, कहाँ बराबर लिखा है, पैराग्राफ्स कैसे है, कितना नीट एंड क्लीन है, वो देखा जाता है, वो उसके आधार पर होता है। तो आज का जो होमवर्क है वो क्या है? ये जो 5 बातें हैं, कर्मेंद्रिय जीत, इसका क्या चित्र बनेगा? एक व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है, एक और सोचो मन से, कर्मेंद्रिय जीत का क्या चित्र है? एक राजा, पिक्चर, चित्र क्या बनेगा? हमें चित्र चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट हमें याद नहीं रहता है। मुरली क्यों नहीं याद रहती है? उसका कारण क्या है? क्योंकि मुरली एब्स्ट्रैक्ट है, उसमें ना तो कोई चित्र है, उसमें कोई कलर भी नहीं है, कोई ड्राइंग, कोई पेंटिंग कुछ नहीं है, इसलिए वो पूरा एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। जो अमूर्त है वो याद नहीं रहता है। हमारी मेमोरी का रूल क्या है? वो स्टोरीज याद रखता है, उसे चित्र याद रहते हैं, उसमें 3D, उसको 3D याद रहता है जो एक्शन के साथ हो रहा है, उसमें बहुत डीप इमोशंस है, और वो उस इमोशनल स्टेज में अगर कुछ हुआ है, डीप सेंसेशन कोई है, वो उसे याद रहता है। वो कौन सी भाषा समझता है? संवेदना की भाषा समझता है, बहुत सुखद संवेदना वो घर कर जाती है, वो खींचती है उसको। इसीलिए काम विकार से निकलना आत्माओं के लिए जीवन भर संभव नहीं होता है, क्योंकि संवेदना थी वो संवेदना का इंपैक्ट सबकॉन्शियस पर है। तो ब्रेन हमारा क्या याद रखता है वो समझ लेना है। मुरली पढ़ ली, याद रहती है क्या? ना। उसको क्या करना है? चित्र में, तो पिक्चर्स, स्टोरीज, और तीसरा है रेडिकुलस थिंकिंग, जो कुछ हटके है ना वो उसे याद रहता है, एकदम हटके। अगर अभी यहां हम बैठे, रोज बैठते हैं, यहां कोई डांस करता हुआ व्यक्ति आ जाए, कोई विचित्र कपड़े पहनकर, वो दिन याद रहेगा कि वो आया था। ऐसा कुछ हटके जो होता है ना, रेडिकुलस, वो उसको याद रहता है। साधारण का रोज नहीं याद, रोज का उसे याद नहीं रहता है। तो ब्रेन क्या याद रखता है और क्या अंदर चला जाता है? हम रोज 10 लोगों की तारीफ सुनते हैं, कुछ याद नहीं रहता। एक लोगों की निंदा सुनी, सीधा अंदर चली जाती है। क्यों? क्यों? योगी का स्वभाव है सुख और दुख दोनों से परे निकल जाना। निंदा और स्तुति दोनों से उसे कोई लेना देना नहीं है, प्रशंसा से कोई लेना देना नहीं है, तो निंदा से भी कोई लेना। स्थित प्रज्ञ योगी है। शुभ और अशुभ, लाभ और हानि, हानि हुई तो दुख होता है कि मेरे पैसे डूब गए। योगी सुख दुख दोनों से परे, उसे मिलन बिछोह दोनों से वो परे होता है। तो हमें अपनी मानसिकता को समझना है, कैसे माइंड फंक्शन करता है, कौन सी चीजें उसे याद रहती है। प्रकृति के सानिध्य में हम जाएंगे तो डीप साइलेंस में जो हम चिंतन करेंगे ना, वो अंदर जाएगा। जितना मौन में, एकांत में चिंतन करते हैं, इसलिए योगी जब तपस्या करते तो दिशा बंद करते थे। दिशा बंद अर्थात मंत्र शक्ति से इस एरिया में अब कोई नहीं आ सकता। यदि बीच में गांव पड़ रहा है और सन्यासी और योगी तपस्वी को जाना है उधर, वो गांव से नहीं गुजरते थे। कहां से गुजरते थे? बाजू से। इसलिए नहीं क्योंकि उनको गांव वाले से प्यार नहीं है, परंतु गांव वालों के बीच में से जाएंगे तो उनसे मिलना होगा, उनसे बातें होगी, सुख दुख की बातें, वो लोगों के सुख दुख होते हैं, रिश्ते संबंधी होते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा कारण, ये बाहर से इसलिए गुजरते हैं क्योंकि यहाँ पेड़ों का संघ है, उन्हें पेड़ बहुत पसंद होते हैं। यहाँ पेड़ है, वहां मनुष्य है। इसीलिए बाजू से गुजर जाते हैं, चुपचाप निकल जाते हैं। यहां जाएंगे तो लोग आएंगे, अपनी इच्छाए प्रकट करेंगे, मेरे बेटे का ये कर दो, नौकरी लगा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। जो भी योगी पुरुष दिखते हैं तो लोग क्या करते हैं? समस्या लेके कूद पड़ते हैं कि ये कुछ कर दे, हाथ ही रख दे, बस कुछ तो कर दे। ब्रह्मचारी है, तपस्या है, ऊर्जा है, तो इनमें शक्ति होती है, इन आत्माओं में। इनका हम तो विकारी है, थोड़ा इनका संपर्क भी हो गया, टच भी कर ले तो भी बहुत है। ये ऐसी सब लालच होता है इधर। पर योगी को पता है ये सब ट्रैप है एक, वो इधर से चुपचाप निकल जाते हैं और दिशा बंद करते हैं। दिशा बंद, जहां पर कोई उस अभयारण्य, उस क्षेत्र में अंदर प्रवेश न कर सके। तो आज क्या करना है? 5 पॉइंट से। कौन से? पहला पॉइंट कर्मेंद्रिय जीत, उसका चित्र। दूसरा रॉयल्टी और पर्सनैलिटी। तीसरा शुभ भावना, शुभकामना, रहम भावना, कल्याण भावना, दाता की भावना। 5 भावनाओं को कैसे पिक्चर के रूप में डिपिक्ट करेंगे वो सोचना पड़ेगा, और आएगा। पेन, पेंसिल हाथ में ले लो ना तो आ जाता है। एक पेंसिल भी रखनी है, पेन नहीं, पेंसिल और रबर। और अगला समान और सम्मान, दूसरों को सम्मान देना कैसे। और लास्ट संतुष्ट मणि, जो कल भी मुरली चली थी, संतुष्ट मणि जो सुबह भी मुरली चली थी, कारण कैसे उससे मुक्त हो जाए। कारण कारण ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ। तो ये आज के कार्य है। ओम शांति।
हर रूह की प्यास है सुकून, हर खामोशी में गूंजता है सुकून,
सुकून सुकून सुकून।
शिव बाबा तू ही देता दिल को सुकून, दर्द के पार सुकून, भीड़ से दूर सुकून, खुद से मेल सुकून, सांसों की राहत सुकून, रात की गोद सुकून, आंखों की नींद सुकून, भीतर का घर सुकून, विश्राम का नाम सुकून। हर रूह की प्यास है सुकून, हर खामोशी में गूंजता है सुकून,
मौन की भाषा सुकून, थकान का अंत सुकून, डर के बाद सुकून, विश्वास का फल सुकून, समर्पण में छिपा सुकून, दुआओं की महक सुकून, अहम के गले में सुकून, सत्य की छाव सुकून।
हर रूह की प्यास है सुकून, हर खामोशी में गूंजता है सुकून,
सुकून सुकून सुकून,
शिव बाबा तू ही देता दिल को सुकून।